देखिए भाई आगे सबक किताब पर। इअलम अन्ना साहिब अल कशाफी जाल अल अस्मा अल मादूदत अल आरियत अनिल मुशाबहत अल मस्कूरत मुअरबतन वलैस निजाउ फिल मुअरब अल्लज़ी हुवा इस्मु मफ़ऊल मिन क़ौलिक अअरबतु फ़इन्न ज़ालिका ला यहसुल इल्ला बिइजरा अल इअराब अला आखिर अल कलिमत बाद अत तरकीब बल फिल मुअरब इस्तिलाहन। गुज़श्ता सबक में हमने मौरब की तारीफ शुरू की थी भाई। साहिब काफिया ने आपको बतलाया अल मौरबुल मुरक्कबुल लदी लम युशबिह मबनी अल असली। मौरब वो मुरक्कब है, वो इसम है जिसको गैर के साथ जोड़ा गया हो और नीज मबनी अल असल के मुशाबे न हो। तो दो शर्तें लगा दी, एक तो ये कि तरकीब में होना चाहिए मौरब को, और दूसरी शर्त यह कि वह मबनी उल असल के मुशाबे न हो। एक शर्त है वजूदी, उसका होना जरूरी, और एक शर्त है आदमी, उसका न होना जरूरी। वजूदी क्या कि तरकीब में हो, और आदमी क्या कि मबनी उल असल के मुशाबे न हो, तो उसको मौरब कहेंगे भाई, उसको मौरब कहेंगे। इस पर इश्काल हुआ था कि ए साहिब काफिया, आपकी तारीफ जामिअ मानिअ नहीं, जामिया यानी अपने तमाम अफराद को जमा करने वाली नहीं, इसलिए क्योंकि फेल मुजारे इसके अंदर दाखिल नहीं हो रहा, हालांकि वो भी मुअरब है और उसको भी इसमें दाखिल होना चाहिए। और नीज आपकी ये तारीफ मानिया भी नहीं, यानी इसके अंदर गैर मुअरब को दाखिल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो दाखिल हो रहे हैं। जैसे जाराबा जैदुन, ये जाराबा फेल माजी है और तरकीब में वाक़ है, और नीज ये मबनी उल असल के मुशाबे नहीं है क्योंकि ये तो खुद मबनी उल असल है, तो ये भी इसके अंदर दाखिल। इज़रिब अमरन, इज़रिब जो है ये तरकीब में भी वाक़ है और मबनी उल असल के मुशाबे भी नहीं क्योंकि ये तो खुद मबनी उल असल है, फ़िल अमर है। और मररतु बिज़ैदीन, ये बा जो है तरकीब में वाक़ है और नीज ये भी मबनी उल असल के मुशाबे नहीं क्योंकि ये तो हर्फ है, ये तो खुद मबनी उल असल है, तो आपकी तारीफ मानिअ नहीं क्योंकि इसके अंदर फेल मुजारे भी दाखिल हो रहा है, फेल अमर हाजिर भी दाखिल हो रहा है और हर्फ भी दाखिल हो रहा है। तो आपकी तारीफ जामिअ नहीं यानी इसमें फेल मुजारे दाखिल नहीं, और मानिअ भी नहीं क्योंकि इसके अंदर फेल माजी, फेल अमर और हुरूफ दाखिल हो रहे हैं। मैंने बताया था कि फेल मुजारे जो है वो भी मौरब है भाई, उसमें इख्तिलाफ है उलमा का। अलबत्ता बसरा वालों का मजहब यह है कि हर फेल असल के एतबार से मबनी है, यानी फेल मुजारे भी असल के एतबार से क्या था, मबनी था, फिर इसकी मुशाबहत आई इसमें फाइल के साथ, तो इसलिए यह क्या बन गया, मुअरब बन गया। ये इसम के साथ इसकी मुशाबहत आ गई, और इसम के अंदर असल क्या है कि वह मुतमक्किन होना चाहिए, एराब को जगह देने वाला हो भाई, तो लिहाजा इस वजह से ये इसको फेले मुजारे कहते हैं। मुजारे का माना मुशाबे, तो इसकी इसम के साथ यानी इसमें फाइल के साथ मुशाबहत आई। मैंने बतलाया कि लफ्जों में भी मुशाबहत है और माना में भी मुशाबहत है। लफ्जों में मुशाबहत इस तरह है कि जितने हरूफ इसमें फाइल के उतने ही हरूफ फेले मुजारे के। नीज इसमें फाइल में जहां जहां हरकत आती है फेले मुजारे में भी वहां हरकत आती है, और इसमें फाइल में जहां जहां सुकून आता है जिस हर्फ पर, फेले मुजारे में भी उस हर्फ पर सुकून आता है। तो मुतहर्रिक के मुकाबले में मुतहर्रिक आता है और साकिन के मुकाबले में साकिन आता है। हरकतें बेशक अलग अलग हों लेकिन मुतहर्रिक के मुकाबले में क्या आएगा, मुतहर्रिक, और साकिन के मुकाबले में साकिन। तो इस तरह हुरूफ की तादाद में भी मुशाबहत, हुरूफ की हरकात और सकनात में भी मुशाबहत, और नीज जैसे इसमें फाइल पर लाम ताकीद दाखिल होता है, इसी तरह फेले मुजारे पर भी ताकीद वाला लाम दाखिल होता है। ला अजरिबन्ना का, मैं जरूर भी जरूर आपकी पिटाई करूंगा, देखा यह लाम ताकीद इस पर दाखिल हो गया, जैसे कि इसमें फाइल पर लाम ताकीद दाखिल होता है। इन नज़ैदन लकाइमुन, देखो कायमुन पर लाम दाखिल है ताकीद वाला। और माना में भी मुशाबहत है कि जैसे इसमें फाइल हाल और इस्तकबाल दोनों के लिए है, इसी तरह फेले मुजारे भी हाल और इस्तकबाल दोनों के लिए है। तो फेले मुजारे जो है ये असल के एतबार से यह मबनी था, लेकिन फिर इसमें फाइल से मुशाबहत की वजह से यह क्या बन गया, मुअरब बन गया। तो असल के एतबार से ये मबनी उल असल के मुशाबे है, क्योंकि असल में खुद क्या था, मबनियुल असल, तो असल के एतबार से ये उनके मुशाबे है। और आपने तो तारीफ में क्या कैद लगा दी, मबनियुल असल के मुशाबे ना हो, और ये तो मुशाबे है। जैसे वो असल के एतबार से मबनी है, ये भी असल के एतबार से क्या है, मबनी, तो ये उनके मुशाबे है, ये तो तारीफ से निकल गया, क्योंकि तारीफ में तो आपने कैद लगाई जो मबनियुल असल के मुशाबे ना हो, और ये तो मबनियुल असल के मुशाबे है, तो आपकी तारीफ जामिया भी नहीं और मानिया भी नहीं। तो साहिब जामी ने मुअरब के बाद कहा अल्लज़ी हुवा क़िस्मुम मिनल इस्मी, कि हर मुअरब यहां नहीं मुराद, वो मुअरब मुराद है जो इस्म की किस्म है। तो अब तमाम एतराजात खत्म हुए, क्योंकि फेले मुजारे वो तो इस्म ही नहीं है, और इसी तरह फेले माजी, फेले अमर और हर्फ ये दाखिल हो रहे थे, भाई यहां मुअरब से हर मुअरब नहीं मुराद, बल्कि कौन सा मुअरब मुराद है, जो इस्म की किस्म है, यानी जो इस्म है, जो इस्म है। तो लिहाजा ये सब चीजें मुअरब की तारीफ से खारिज हुई, और इनको खारिज ही होना चाहिए। भाई फेले मुजारे आपने कहा था खारिज है, भाई होना ही खारिज चाहिए, क्योंकि हम इसमें मुअरब की बात कर रहे हैं, मुतलक मुअरब की बात नहीं कर रहे। और माजी, अमर और हुरूफ आपने कहा था ये दाखिल हो रहे हैं, अब जब हमने बतला दिया कि मुअरब से इसमें मुअरब मुराद है, अब ये दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि ये इस्म नहीं है, ये फेल हैं या हर्फ हैं। भाई उसके बाद दूसरा इश्काल ये हुआ था कि आपने कहा मुअरब क्या है, अल मुअरबुल मुरक्कब, मुअरब वो मुरक्कब होता है, हालांकि मुअरब तो इसम की किस्म है, और इसम वो कलिमा की किस्म है, और कलिमा की तारीफ क्या पढ़ी थी आपने, लफ्जों वुज़िअल इमाना मुफ्रदिन, तो उसकी तारीफ में इफराद की कैद है, कि वो लफ्ज मुफरद होगा या माना मुफरद होगा, मुफरद दोनों की सिफत बन सकती है ना, लफ्ज की भी और माना की भी, लेकिन बहरहाल माल दोनों में एक ही है, आप चाहे लफ्ज की सिफत बनाएं चाहे माना की सिफत बनाएं। मुफरद लफ्ज किसे कहते हैं कि जुजे लफ्ज जुजे माना पर दलालत ना करे, तो वो लफ्ज भी मुफरद होता है और वो माना भी मुफरद होता है। और अगर माना मुफरद हो तो माना मुफरद किसे कहते हैं कि जुजे लफ्ज जुजे माना पर दलालत न करे, तो ये वाला माना क्या कहलाता है, मुफरद, और वो लफ्ज भी क्या कहलाता है, मुफरद कहलाता है, बात एक ही है दोनों सूरतों में। तो मालूम हुआ कलीमा तो मुफरद होता है, तो आपने तो क्या कह दिया, अल मुअरबुल मुरक्कब, मुअरब मुरक्कब होता है, तो ये तो आपकी ये तारीफ सही नहीं। तो उसका जवाब दिया कि यहां अल मुरक्कब जो है इसका मौसूफ महजूफ है, अयिल इस्मुल मुरक्कब, यानी वो इसम जो मुरक्कब हो, और मुरक्कब वो इसमें मफूल है, इस पर अलिफ लाम जो है वो अल्लजी के माने में है, यानी अयिल इस्मुल लजी रुकिबा मा गैरिही, तवज्जो है, अल्लजी रुकिबा मा गैरिही, यानी मुअरब वो इसम है, अल्लज़ी रुकिबा मा गैरिही, जिसको गैर के साथ जोड़ा गया हो। हासिल ये कि यहां जो मुरक्कब का लफ्ज आया, इससे मुरक्कब भी नफसी ही नहीं मुराद, बल्कि मुरक्कब भी गैरिही मुराद है, ऐ मा गैरिही। गुलाम ज़ैदिन, ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, तो ये सारा मजमूआ मुरक्कब भी नफसी ही है, अपनी जात के एतबार से मुरक्कब है, और इसके अंदर जो सिर्फ गुलाम का लफ्ज है या सिर्फ जैद का लफ्ज है, ये मुरक्कब भी गैरी ही है, इसको गैर के साथ जोड़ा गया है, गुलाम को जैद के साथ जोड़ा गया है और जैद को गुलाम, तो इनमें से हर एक अलग अलग ये मुरक्कब भी गैरी ही है, और सारा मजमूआ क्या है, मुरक्कब भी नफसी ही, अपनी जात के एतबार से यह सारा मजमूआ मुरक्कब है। बात समझ में आ गई, तो यहां मुरक्कब से मुरक्कब भी गैरी ही मुराद है, मुरक्कब भी नफसी ही मुराद नहीं भाई। और साथ साहिब जामी ने मजीद फरमाया कि तरकीबन यतहक्ककु माहु आमिलुहु, ये जोड़ना भी ऐसा हो कि इस तरकीब में उसका आमिल भी साथ मौजूद हो, भाई आमिल भी साथ होना चाहिए। अब जैदुन कायमुन, मुब्तदा खबर दोनों इसके अंदर दाखिल हो गए, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, तरकीब में वाके होते हैं, मुब्तदा के लिए खबर और खबर के लिए मुब्तदा, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और ये ऐसी तरकीब है जिनमें इनका आमिल भी है, और इन दोनों में आमिल क्या है, इब्तिदा। इब्तिदा किसे कहते हैं, मैंने आपको बतलाया था कि मुस्नद या मुस्नद इलैह हो और आमिल लफ्जी से खाली हो, तो फिर भाई मुस्नद इलैह है या मुस्नद है तो रफा तो आएगा, इन दोनों पर क्या आएगा, इसम है, मुब्तदा और खबर है, इन पर रफा आता है, और रफा खुद ब खुद तो नहीं आता, उसके लिए तो आमिल चाहिए, तो ये रफा इन पर कहां से आया, इनमें तो कोई आमिल लफ्जी नहीं है, तो जमहूर के नजदीक इन दोनों के अंदर आमिल इब्तिदा है, यानी आमिले लफ्जी से खाली होना। एक इसम क्या बने, मुस्नद बने या मुस्नद इलै बने, और आमिले लफ्जी से खाली हो तो इसके अंदर कहेंगे इब्तिदा आमिल है, यानी आमिले मानवी है, लफ्जी आमिल तो कोई नहीं, आमिले लफ्जी से तो खाली है, तो फिर क्या मान लो यहां पर आमिले मानवी है जो इनको रफा दे रहा है, और उस आमिले मानवी का नाम क्या है, इब्तिदा। और तुलबा परेशान होते हैं, पता नहीं वो आमिले मानवी क्या है, इब्तिदा क्या चीज है, मैंने बताया बस आमिले लफ्जी से खाली होना ये है इब्तिदा। इसम हो, मुस्नद या मुस्नद इलैह हो और आमिले लफ्जी से खाली है तो अब हम क्या कहेंगे, ये इब्तिदा है इनके अंदर आमिल। बात समझ में आ गई। और ये सिर्फ मुब्तदा खबर में इब्तिदा आमिल होती है और किसी जगह ये इब्तिदा आमिल नहीं है। तो लिहाजा जैदुन कायमुन ये मुब्तदा खबर भी इसमें दाखिल हो गए, ये भी तरकीब में वाके हैं और साथ इनका आमिल यानी इब्तिदा भी है। और काम हा उलाई, ये हा उलाई इसमें इशारा है, और मैंने आपको बतलाया था कि इसमें इशारा किस में से है, मबनियात में से, लेकिन यह भी इसके अंदर दाखिल हो गया क्योंकि अभी तारीफ पूरी नहीं हुई। अभी सिर्फ क्या कहा है, वो इसम जो तरकीब में वाक हो गैर के साथ और वो तरकीब भी ऐसी हो जिसमें उसका आमिल भी मौजूद हो, तो काम हा उलाई, हा उलाई भी इसी तरह है, तरकीब में भी वाक है और इसके साथ इसका आमिल काम भी मौजूद है, काम भी मौजूद है। हां आगे चलकर जब वो कहेंगे अल्लज़ी लम युशबिह मबनी अल असल, फिर हा उलाई निकल जाएगा क्योंकि यह तो मबनी है, मुअरब नहीं है, तो हा उलाई भी इसके अंदर दाखिल हो गया। तो वो लफ्ज निकल गए जो तरकीब में वाके ना हो, जैसे अस्माए मादूदा हैं, वो अस्मा जिनको शुमार किया जाता है वो तो सिरे से तरकीब में ही नहीं वाके, तो वो अल मुरक्कब उन पर सादिक ही नहीं आ रहा, अल्लज़ी रुकिबा मा गैरे ही उन पर सादिक ही नहीं आ रहा, तो वो अस्माए मादूदा वो भी निकल गए, वो अस्मा जिनको शुमार किया जाता है, किसी चीज को गिनते हैं भाई उसको शुमार करते हैं, वो भी निकल गए इससे। और नीज कोई लफ्ज तरकीब में वाके हो लेकिन आमिल साथ ना हो वो भी निकल गया, जैसे गुलाम जैदीन, तो देखो गुलाम जैदीन दोनों तरकीब में है और जैदीन के साथ आमिल है क्योंकि मुजाफ क्या करता है, मुजाफिले को जर देता है, मुजाफ जो है मुजाफिले को जर देता है, तो जैद तरकीब में भी वाके है और साथ आमिल भी है, यानी गुलाम वो इसको जर दे रहा है, और नीज मबनी असल की मुशाबे भी नहीं है, तो यह तो मुअरब है, जबकि गुलाम का लफ्ज जो है वह मबनी है साहिब काफिया की तारीफ के मुताबिक। क्यों? क्योंकि ये तरकीब में तो है लेकिन इस तरकीब में इसका आमिल साथ नहीं है। आप इस गुलाम पर रफा पढ़ना चाहते हैं, नसब जर भाई कुछ भी नहीं पढ़ सकते, जो भी पढ़ना है उसके लिए क्या चाहिए, आमिल चाहिए भाई, तो लिहाजा ये गुलाम का लफ्ज ये मबनी है साहिब काफिया के नजदीक, क्योंकि ये अगरचे तरकीब में भी वाक है, मबनी उल असल के मुशाबे भी नहीं है, लेकिन इसका आमिल साथ मौजूद नहीं। तो अस्माए मादूदा भी इससे निकल गए, क्यों, अल मुरक्कब की कैद लगाते ही अस्माए मादूदा भी निकल गए और गुलाम जैदीन जैसे लफ्ज भी निकल गए। और फिर उसके बाद मैंने बतलाया था कि अल्लज़ी लम युशबिह, वो इसम जो मुशाबेह ना हो, और मुशाबेहत से मुराद यहां मैंने बतलाया मुनासिबत है, मुनासिबत, और मुनासिबत आम है कि वो किसी भी किस्म की मुनासिबत हो, तो लेकिन हो ऐसी मुनासिबत जो मनए एराब का फायदा दे, मन एराब के अंदर मुअस्सिर हो, एराब को रोक दे, एराब को, तो वो खास मुनासिबतें मुराद हैं, वरना तो हर मुअरब भी लफ्ज है और मबनी उल असल भी क्या है, लफ्ज हैं, तो मुशाबहत तो बाई लिहाज भी मौजूद है, ये भी लफ्ज वो भी लफ्ज, या हर इसम कलीमा है और मबनी उल असल भी क्या है, कलीमा है, तो ये भी कलीमा वो भी कलीमा, मुशाबहत तो मौजूद है, लेकिन हर मुशाबहत मुराद नहीं है बल्कि खास मुशाबिहत या यूं कहें खास मुनासिबत मुराद है जो मन एराब में मुअसर हो, असर दिखाए, एराब को रोक दे, मबनी बना दे लफ्ज को भाई। और वो छह किस्म की मुनासिबतें हैं जो आगे मबनियात के बाब में आएंगी भाई, उनमें से एक मुनासिबत यहां इन्होंने मैंने बतला दी थी आपको, जैसे इसमें इशारा और इसमें मौसूल, ये मबनी उल असल यानी हर्फ के मुशाबे हैं, जैसे हर्फ अपना माना बताने में गैर का मोहताज, इसी तरह इसमें इशारा भी अपना माना बताने में मुशारू निले का मोहताज और इसमें मौसूल भी अपना माना बताने में सिले का मोहताज, तो ये हर्फ की तरह हुए और हर्फ तो मबनी उल असल है, तो ये दोनों भी क्या बन गए, मबनी बन गए। बात समझ में आ गई। मैंने आपको बतलाया था कि मुनासिबत आम है, यहां दरअसल चार किस्म के इश्तराक हो सकते हैं जो दो चीजों में, कभी दो चीजों की जींस एक होती है, इसको मुजानसत कहते हैं। जैसे इंसान की जींस भी हैवान, गाय बैल बकरी की जींस भी हैवान, तो इसमें हम क्या कहेंगे, इनमें मुजानसत है, इनमें मुजानसत है, यानी जींस एक है। और कभी इश्तराक नौ के अंदर होता है, जैसे जैद अमर और बकर, इन सब की नौ एक है, तो इसको कहेंगे मुमासलत, ये सब आपस में एक दूसरे के मुमासिल हैं भाई। और कभी जो है इश्तराक जो है वो सिफत में होता है और उसको मुशाबहत कहते हैं, जैसे हम कहते हैं जैद शेर जैसा है, यानी सिफत शुजात के अंदर, बहादुरी की सिफत के अंदर, तो सिफत के अंदर इश्तराक हो तो इसको मुशाबहत कहते हैं। और कभी जो है इश्तराक होता है शक्लो सूरत में, उसको मुशाकला कहते हैं भाई। जैसे मैंने बतलाया कि एक कलम है दूसरे कलम जैसा हो, या एक किताब है दूसरी किताब जैसी है, या एक भाई जो है अपने भाई जैसा है, तो देखो शक्लो सूरत एक जैसी हो, इसको मुशाकला कहते हैं। तो यहां लम युशबिह, ये आप ना समझें कि यहां तो मुशाबहत का जिक्र आया, मालूम हुआ सिफत के अंदर इश्तराक होगा। कोई इसम मबनी कब बनेगा, जब मबनी उल असल के साथ सिफत में इश्तराक आ जाए। नहीं भाई, सिफत में इश्तराक मुराद नहीं, बल्कि यहां मुशाबहत किस माना में है, मुनासिबत के माना में है। कोई भी मुनासिबत आ जाए जो मना एराब के अंदर मुअसर हो तो वह इसम मबनी बन जाएगा। और फिर आखिर में यह बतलाया था कि जो मबनी उल असल है, मबनियल असली, ये जो मुजाफ मुजाफिले हैं इसमें इजाफत बयानिया है। इजाफत बयानिया इसको कहते हैं जिसमें जो मुजाफ इले होता है वह मुजाफ का बयान करता है। मबनियल असली, मबनी मबनी, यह है मुजाफ भाई। मबनी क्या मुराद है इससे, मबनी से आगे बतला दिया अल असल, वो वाला मबनी जो असल हो बिना के अंदर। तो मबनी और असल दोनों एक ही चीज हैं भाई। अब आइए आज के सबक पर भाई, देखिए भाई, इअलम अन्ना साहिब अल कशाफी जाल अल अस्मा अल मादूदत अल आरियत अनिल मुशाबहत अल मस्कूरत मुअरबतन। यहां से यह बतला रहे हैं आपको कि ये जो अस्माए मादूदा हैं, अस्माए मादूदा, इसके अंदर साहिब मुफस्सल और साहिब काफिया का इख्तिलाफ है। साहिब मुफस्सल के नजदीक जो है ये अस्माए मादूदा जो हैं ये मुअरब हैं, ये मुअरब हैं, और साहिब काफिया के नजदीक ये मबनी हैं भाई। अस्माए मादूदा जिसमें कोई तरकीब नहीं होती, आप महज वैसे चीजों को शुमार कर रहे हैं या गिन रहे हैं, उस वक्त उन पर तलफ्फुज करते हैं, जैसे हुरूफ तहज्जी पर आप तलफ्फुज करते हैं अलिफ बा ता सा जीन, देखो आप उस हुरूफ तहज्जी शुमार करवा रहे हैं, उस्ताद को सबक सुना रहे हैं, यहां कोई तरकीब है, तरकीब नहीं। और इसी तरह या साथियों के नाम गिनवाते हैं आप, जैद आमर बकर खालिद वगैरह, तो इसमें कोई तरकीब नहीं। या ऐसे और कोई भी चीज आप शुमार कर रहे हो जहां तरकीब ना हो, तो ये जो अस्माए मादूदा हैं इसमें साहिब मुफस्सल यानी अल्लामा जमखशरी और साहिब काफिया का इख्तिलाफ है। साहिब मुफस्सल या यूं कहो साहिब कशाफ जो है, मैंने बताया था कि कशाफ ये तफसीर है अल्लामा जमखशरी की भाई, और मुफस्सल भी उन्हीं की किताब, और उसी मुफस्सल से साहिब काफिया ने अपनी किताब काफिया अखज की है, और साहिब काफिया ने उस मुफस्सल की एक शरह भी लिखी है जिसका नाम ईजाह है। अल्लामा जमखशरी का इंतकाल हुआ है 538 हिजरी में, जबकि साहिब काफिया का इंतकाल हुआ है 646 हिजरी में भाई, तो ये उनसे मुअख्खर हैं भाई। तो साहिब काफिया के नजदीक ये अस्माए मादूदा ये मबनी है, और साहिब मुफस्सल के नजदीक ये मुअरब हैं। इसीलिए साहिब काफिया ने जो मुअरब की तारीफ की उसमें अल मुरक्कब की कैद जिक्र कर दी, अल्लज़ी रुक्किबा मअ गैरिही, वो इसम जिसको गैर के साथ जोड़ा गया हो। अस्माए मादूदा निकल गए, वहां तो तरकीब ही नहीं, उनको तो जोड़ा ही नहीं गया किसी के साथ, जबकि साहिब मुफस्सल ने ये अल मुरक्कब की कैद अपनी तारीफ के अंदर नहीं लगाई जब वो मुअरब की तारीफ करते हैं, तो उनके नजदीक ये मुअरब हैं भाई। तो इख्तिलाफ जो है ये मुअरब इस्तिलाही के अंदर है, याद रखो एक है मुअरब लुगवी, एक है मुअरब इस्तिलाही। मुअरब लुगवी, मुअरब कौन सा सीगा है, इसमें मफूल है, तो इसमें मफूल किसको कहेंगे, मौरब किसे कहेंगे, वो इसम जिसको बाकायदा एराब दिया गया है, जाराबा जैदुन, जी जैदुन को मैंने एराब दिया या नहीं, अरबी जुबान के एतबार से ये मौरब है, इसको एराब दिया गया है बाकायदा, जाराबा जैदुन, तो ये जैदुन को बाकायदा एराब दिया गया है। और अगर मैं इस पर वक्फ करूं तो कैसे कहूंगा, जाराबा जैद, तो अरबी जुबान के एतबार से यह मौरब नहीं है, इसको एराब नहीं दिया गया, इस पर तो वक्फ कर दिया गया। बात समझ में आ गई, तो अरबी जुबान के एतबार से मौरब तो उसको कहेंगे जिसको बाकायदा लफ्जों के अंदर एराब दे दिया जाए भाई, उस पर एराब पढ़ दिया जाए भाई, उसको मौरब कहेंगे। और जब एक लफ्ज को बाकायदा एराब दे दिया गया तो फिर तो सबके नजदीक वो मौरब ही होगा, उसमें तो फिर झगड़ा ही नहीं है, क्योंकि उस पर तो एराब का इजरा कर दिया गया है बाकायदा, कोई शख्स अब कहेगा यह मौरब नहीं है, जब बाकायदा एराब दे दिया गया फिर झगड़ा हो सकता है, फिर तो साहिब काफिया के नजदीक भी ये क्या है, मौरब है, एराब दिया गया। अल्लामा ज़मख़शरी के नजदीक भी क्या है, मौरब है, यानी एराब इसको दिया गया है, ज़राबा ज़ैदुन, इस ज़ैदुन को क्या किया गया है। तो एक है मौरब लुगवी, मौरब लुगवी के अंदर तो दोनों का इख्तिलाफ है ही नहीं भाई, मौरब लुगवी किसे कहेंगे, जिसको बाकायदा लफ्जों में एराब का उस पर इजरा कर दिया जाए। तो इख्तिलाफ मौरब इस्तिलाही में है कि इस्तिलाह में मौरब किसे कहेंगे, इस्तिलाह में। तो साहिब मुफस्सल जो हैं अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं जो इसम भी तरकीब के बाद उस पर एराब जारी हो सके उसको मौरब कहेंगे, हर वो इसम कि अगर वो तरकीब में वाके हो जाए तो उस पर एराब जारी हो सके, यानी उसमें सलाहियत है एराब की जगह देने की, तो उसको मौरब कहेंगे। लिहाजा मैंने कहा जैद, अमर, बकर अस्माए मादूदा हैं, लेकिन ये जैद, ये वाला अमर जब ये तरकीब में वाके हो जाए तो एराब इस पर जारी हो सकते हैं या नहीं, तो इनमें सलाहियत तो है, तो उनके नजदीक महज सलाहियत एराब काफी है और यह फिर मौरब कहलाएगा। इनको हम क्या कहेंगे, मौरब कहेंगे, यानी जिसमें एराब को कबूल करने की सलाहियत हो और वह मबनीउल असल के मुशाबे भी ना हो भाई। तो उन्होंने सिर्फ सलाहियत का एतबार किया है, बिलफेल एराब का मुस्तहिक होने का एतबार नहीं किया। बात समझ भी आ रही है कि नहीं, मालूम हुआ जैद, अमर, बकर, खालिद, कोई तरकीब नहीं, लेकिन साहिब मुफस्सल के नजदीक ये सारे लफ्ज, ये सारे इसम कैसे हैं कि अगर ये तरकीब में वाके हो गए तो ये एराब की सलाहियत रखते हैं, इन पर रफा, नसब, जर आ सकता है, क्योंकि ये मबनीउल असल के मुशाबे नहीं है, तो इनको वो मौरब कहते हैं। जबकि साहिब काफिया फरमाते हैं सिर्फ एराब की सलाहियत काफी नहीं, बल्कि बाकायदा तरकीब में वाके हो और एराब का मुस्तहिक भी बन जाए फिर इसको मौरब कहेंगे। सिर्फ एराब की सलाहियत काफी नहीं, बल्कि बाकायदा एराब का मुस्तहिक बन जाए फिर इसको मौरब कहेंगे। और जैद, अमर, बकर, खालिद जब अकेले हैं इस वक्त ये एराब के मुस्तहिक हैं, इस वक्त ये एराब के मुस्तहिक नहीं, हां ये जब तरकीब में आ जाएंगे, जाराबा जैदुन, जाराबा, अब आप चाहे जाराबा जैदुन पढ़ें चाहे आप जाराबा जैद पढ़ें, वक्फ कर दें, दोनों सूरतों में जब ये तरकीब में आ गया और तरकीब भी ऐसी है जिसमें इसका आमिल भी है और नीज ये मबनीउल असल के मुशाबे भी नहीं, तो ये एराब का मुस्तहिक बन गया। क्या बन गया, जब ये एराब का मुस्तहिक बन गया, अब आप चाहे एराब पढ़ो या ना पढ़ो, साहिब काफिये के नजदीक ये मौरब है, चाहे आप ज़राबा जैद पढ़ो चाहे आप ज़राबा जैदुन पढ़ो, ये क्या है, एराब का बाकायदा मुस्तहिक बन चुका है। तो साहिब मुफस्सल ने सिर्फ सलाहियत का एतबार किया कि एराब का मुस्तहिक होने की सलाहियत हो, और साहिब काफिया ने एराब का मुस्तहिक होने की सलाहियत सिर्फ इसका एतबार नहीं किया बल्कि बाकायदा एराब के मुस्तहिक होने का एतबार किया है। फर्क समझ में आया, तो अकेला जैद, अमर, बकर ये साहिब मुफस्सल के नजदीक मौरब हैं क्योंकि इनमें एराब का मुस्तहिक होने की सलाहियत है। जबकि साहिब काफिया के नजदीक यह मबनी है क्योंकि उनके नजदीक सिर्फ एराब का मुस्तहिक होने की सलाहियत काफी नहीं बल्कि एराब का बाकायदा मुस्तहिक भी हो जाए। और वह कब होगा? जब तरकीब में वाकई हो, और तरकीब भी किस किस्म की हो जिसमें उसका आमिल भी हो और नीज वह मबनीउल असल के मुशाबे भी ना हो। तो अब जराबा जैदुन, यह जैदुन यह साहिब काफिया के नजदीक मुअरब है। यह क्या है? मुअरब है क्योंकि यह बाकायदा एराब का मुस्तहिक हो चुका है। अब चाहे आप एराब न भी पढ़ें यह फिर भी क्या कहलाएगा? साहिब काफिया के नजदीक मुअरब ही कहलाएगा। आपने कहा जराबा जैद, आपने तो एराब नहीं पढ़े, लुगवी एतबार से यह मुअरब नहीं है जराबा जैद क्योंकि आपने तो वक्फ कर दिया, आपने तो एराब जारी नहीं किया, इस तो यह मुअरब नहीं, यानी एराब नहीं दिया गया लुगवी एतबार से इसको, लेकिन इस्तिलाह के एतबार से साहिब काफिया के नजदीक ये मुअरब है क्योंकि यह एराब का मुस्तहिक हो चुका है। एराब का मुस्तहिक हो चुका है, तरकीब में वाकई है और उसमें उसका आमिल भी है और यह मबनीउल असल के मुशाबे भी नहीं है, तो यह एराब का मुस्तहिक हो चुका है। बात समझ में आ गई? मुख्तसर लफ्जों में यूं कहो, साहिब मुफस्सल ने भी एराब बिलकुवा का एतबार किया। किसका? जिसमें एराब की सलाहियत हो, जैसे जैद, अमर, बकर, इनमें सलाहियत है या नहीं? तवज्जो है, मैं जरा गहरी बात करने लगा हूं। गहरी बात भाई, एक है लफ्ज पर आप बाकायदा एराब को जारी कर देते हैं, जराबा जैदुन, आपने जैद को बाकायदा एराब दे दिए, तो यह मुअरब लुगवी है, यह मुअरब है, इसमें मफूल है जिसको एराब दिया गया है, तो इसमें तो इख्तिलाफ ही नहीं है, यह तो सबके नजदीक क्या है? मुअरब। इख्तिलाफ किस में है? मुअरब इस्तिलाही में, और मुअरब इस्तिलाही में यह जो जराबा जैदुन, इस जैद पर आप एराब ना पढ़ें, जरा वक्फ कर दें, जराबा जैद, तो साहिब मुफस्सल के नजदीक भी यह मुअरब है और साहिब काफिया के नजदीक भी यह मुअरब है, हालांकि मुअरब लुगवी तो नहीं। आपने इसको एराब दिया, आपने इस पर एराब का इजरा किया है, तो मुअरब लुगवी तो नहीं है लेकिन मुअरब इस्तिलाही है, साहिब काफिया के नजदीक भी और साहिब मुफस्सल के नजदीक भी। मालूम हुआ दोनों के नजदीक बिलफेल एराब देना जरूरी नहीं है बल्कि बिलकुवा एराब ही काफी है, बल्कि बिलकुवा एराब की सलाहियत ही काफी है। लेकिन फर्क इतना है कि एराब बिलकुवा यानी एराब की सलाहियत वो दो किस्म की हो गई, एक वो एराब बिलकुवा है जो बिलफेल के करीब है, बिलफेल के, और एक वो एराब बिलकुवा है जो बिलफेल से बईद है। तवज्जो है? नहीं तवज्जो, नहीं तवज्जो। साहिब मुफस्सल के नजदीक भी मुअरब के लिए एराब बिलफेल जरूरी है या एराब बिलकुवा काफी है? बिलकुवा काफी। साहिब काफिया के नजदीक भी एराब बिलफेल जरूरी है या बिलकुवा काफी है? बिलकुवा काफी है। जराबा जैद दोनों के नजदीक यह जैद मुअरब है, लेकिन फर्क यह है दोनों के बिलकुवा में कि साहिब मुफस्सल उस एराब बिलकुवा का एतबार करते हैं जो बिलफेल से दूर है, सिर्फ सलाहियत हो एक किस्म में तो उसको क्या कहते हैं? मुअरब। और साहिब काफिया वो एराब बिलकुवा जो बिलफेल के करीब है, यानी बाकायदा एक इसम एराब का मुस्तहिक बन जाए, एक इसम बाकायदा तरकीब में वाकई हो जाए, उसका आमिल भी हो और फिर चाहे एराब न भी पढ़ो, फिर एराब चाहे, जैसे जरबा जैद, ये जैद क्या है? तरकीब में भी है और आमिल भी साथ है, लेकिन आपने एराब इस पर पढ़ा नहीं, एराब पढ़ा नहीं, लेकिन ये एराब का मुस्तहिक हो चुका है। ये क्या है? एराब का। तो एक ये वाला जराबा जैद के अंदर जो जैद है ये एराब का मुस्तहिक हो चुका है, और एक अकेला लफ्ज जैद है, तो वह जो है अकेला लफ्ज जैद है, तो साहिब मुफस्सल के नजदीक वो अकेला लफ्ज क्या है? मुअरब है, यानी उसमें उन्होंने एराब बिलकुवा का एतबार किया, लेकिन वह एराब बिलकुवा बिलफेल से बईद है। क्या? यह अकेला जैद है, इस पर एराब बिलफेल नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इसको तरकीब में भी लाना पड़ेगा और तरकीब के अंदर इसके साथ आमिल को भी लाना पड़ेगा और फिर उसके बाद इस पर एराब जारी हो सकता है। तो यह मुअरब है बिलकुवा, लेकिन किस किस्म का मुअरब बिलकुवा है? जो बिलफेल से दूर है। नहीं समझ में आ रही? यह बिलफेल से दूर है। अकेला जैद साहिब मुफस्सल के नजदीक मुअरब है, کیا ہے؟ معرب ہے. اور یہ بالفعل اعراب اس پر آ سکتا ہے لیکن بڑا دور ہے, اس کو ترکیب میں بھی لانا پڑے گا اور ترکیب بھی ایسی ہو جس میں اس کا عامل بھی ہو. تو صاحب مفصل اعراب بالقوة کا اعتبار کرتے ہیں, لیکن وہ اعراب بالقوة کہ وہ بالفعل سے بعید ہے بھائی, وہ بالقوة ہونا کیا ہے؟ بالفعل سے بعید ہے, کیونکہ تو ترکیب میں ہی سرے سے نہیں ہے. اور صاحب کافیہ جو ہے وہ بھی اعراب بالقوة کا اعتبار کرتے ہیں, لیکن کون سا بالقوة؟ جو بالفعل کے قریب ہے, جیسے ضرب زید, یہ ان صاحب کافیہ کے نزدیک معرب ہے. کیا ہے؟ آپ نے زید پر کوئی اعراب جاری کیا نہیں, لیکن اس میں صلاحیت آ گئی یا نہیں؟ اور یہ بالفعل کے قریب آ گیا کیونکہ صرف آپ نے اعراب اوپر نہیں پڑھا, ورنہ تو یہ ترکیب میں بھی آ چکا ہے, عامل بھی ساتھ آ چکا ہے, اب صرف اعراب کا اجرا باقی رہ گیا. اعراب کا صرف اجرا باقی رہ گیا. تو صاحب مفصل نے بھی بالقوة کا اعتبار کیا, لیکن وہ والا بالقوة جو بالفعل سے بہت دور ہے بھی. اور صاحب کافیہ نے بھی بالقوة کا اعتبار کیا, لیکن وہ والا بالقوة جو بالفعل کے قریب ہے, ترکیب میں بھی آ چکا ہے, اعراب کا مستحق بھی ہو چکا ہے, اب صرف اس پر اعراب کا پڑھنا رہ گیا ہے, پڑھو یا نہ پڑھو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ معرب ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ تو معرب لغوی کسے کہتے ہیں؟ جس پر باقاعدہ لفظوں میں جس پر اعراب جاری کر دیا جائے, اور اس میں تو پھر کسی کا بھی اختلاف نہیں, اس میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. جب بالفعل ایک لفظ پر اعراب جاری کر دیا گیا پھر تو وہ سب کے نزدیک کیا ہے؟ معرب. لیکن یہاں معرب اصطلاحی کی بات ہو رہی ہے. صاحب مفصل کے نزدیک معرب کسے کہیں گے؟ اس میں صرف مستحق اعراب ہونے کی صلاحیت ہونی چاہیے, لہذا اسماء معدودہ وہ بھی کیا ہیں؟ معرب. جبکہ صاحب کافیہ مستحق اعراب ہونے کی صرف صلاحیت کا اعتبار نہیں کرتے, بلکہ باقاعدہ وہ بالفعل کیا ہو جائیں؟ مستحق اعراب ہو جائیں, اس کا اعتبار کرتے ہیں. دیکھیے بھائی کتاب پر. اعلم ان صاحب الکشاف جعل الاسماء المعدوده العاريه عن المشابهه المذكوره معربه. تو جان لے کہ صاحب کشاف یعنی وہی علامہ زمخشری جو ہیں, جعل الاسماء المعدوده, انہوں نے قرار دیا ہے اسماء معدودہ کو, وہ اسماء معدودہ, العاریت عن المشابہت المذکورت, جو خالی ہوں اس مشابہت مذکورہ سے. وہ اسماء معدودہ جو اس مشابہت مذکورہ سے خالی ہوں, یعنی جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہوں, معربتن, ان کو کیا قرار دیا ہے؟ معرب قرار دیا ہے. وَلَيْسَ النِّزَاعُ فِي الْمُعْرَبِ الَّذِي هُوَ اسْمُ مَفْعُولٍ, اور جھگڑا نہیں ہے اس معرب کے بارے میں جو کہ اس میں مفعول ہے. من قولک اعربتو, آپ کے قول اعربتو سے, آپ کا قول جو اعربتو ہے, اعربتو کا کیا معنی؟ میں نے اعراب دیا, میں نے اعراب کو کا اجرا کیا, توجہ ہے؟ تو اعربتو فعل سے جو اس میں مفعول آتا ہے یعنی معرب, یعنی وہ لفظ جس کو باقاعدہ اعراب جس پر جاری کیا گیا ہو, وہ مراد نہیں, اس میں جھگڑا نہیں. جب اعراب جاری کر دیا گیا پھر تو جھگڑا ہے ہی نہیں, پھر تو سب کے نزدیک وہ معرب ہے, جھگڑا صرف معرب اصطلاحی میں ہے بھائی. تو کہتے ہیں وليس النزاع في المعرب الذي هو اسم مفعول من قولك اعربت, اور جھگڑا نہیں ہے اس معرب کے بارے میں جو آپ کے قول اعربت سے اس میں مفعول ہے. فإن ذلك لا يحصل إلا بإجراء الإعراب على آخر الكلمة بعد التركيب, اس لیے کیونکہ وہ والا معرب جو ہے یعنی معرب لغوی, وہ تو حاصل نہیں ہوگا مگر یہ کہ اعراب کا اجرا کر دیا جائے, على آخر الكلمة, کلمہ کے آخر پر, بعد التركيب, ترکیب کے بعد, یہ تو اسی وقت معرب کہلائے گا اور پھر تو اس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں. بل فی المعرب اصطلاحاً, بلکہ جھگڑا جو ہے معرب کے اندر ہے, اصطلاحاً باعتبار اصطلاح کے, کہ اصطلاحی اعتبار سے معرب کسے کہتے ہیں. فاعتبر العلامۃ مجرد صلاحیۃ الاستحقاق الاعراب بعد الترکیب, بس اعتبار کیا علامہ نے یعنی علامہ زمخشری نے اعتبار کیا ہے مجرد صلاحیۃ الاستحقاق الاعراب بعد الترکیب, کہ صرف اعراب کا مستحق ہونے کی صلاحیت ہو بعد الترکیب, کس کے بعد؟ एक इसम में तरकीब के बाद एराब का मुस्तहिक होने की सलाहियत हो तो यह काफी है, इसको हम मौरब कहेंगे। लिहाजा अस्माए मादूदा भी दाखिल हो गए, यह भी जब मबनीउल असल के मुशाबे न हो और तरकीब में वाके होकर एराब के मुस्तहिक होने की सलाहियत रखते हैं तो फिर इनको क्या कहेंगे, मौरब कहेंगे। तो कहते हैं फातबर अल्लामतु मुजर्रदा सलाहियत इल इस्तेहकाक इल एराब इबादत तरकीब। तो अल्लामा ज़मख़शरी ने एतबार किया है तरकीब के बाद एराब का मुस्तहिक होने की सलाहियत का, सिर्फ इस सलाहियत का एतबार किया है। वह हुआ जाहिर मिन कलाम इल इमाम अब्दुल काहिरी, और यही जाहिर है इमाम अब्दुल काहिर के कलाम से भी, यही जाहिर है इमाम अब्दुल काहिर के कलाम से भी। याद रखो ये इमाम अब्दुल काहिर जो हैं ये बहुत बड़े नहवी गुजरे हैं और ये इमाम हैं इल्मे बलागत के, भाई इल्मे बलागत के दुरुसुल बलागा और मुख्तसरुल मानी में इनका जिक्र मिलेगा आपको जगह जगह, भाई बलागत की जहां किताब आएगी उसमें इनका जिक्र मिलेगा। इनका इंतकाल हुआ है 471 हिजरी में, यानी ये अल्लामा ज़मख़शरी से पहले गुजरे हैं। अल्लामा ज़मख़शरी का इंतकाल तो 538 हिजरी में हुआ है। तो ये बहुत बड़े बलागत के इमाम हैं और बलागत में इनकी दो किताबें बड़ी मशहूर हैं भाई। एक का नाम है असरारुल बलागा, असरारुल बलागा, और एक का नाम है दलाइलुल एजाज, जिसमें ये कुरान की फसाहत और बलागत को बयान करते हैं कि कुरान कितना फसीह और बलीग है भाई। तो ये शेख अब्दुल काहिर ये बलागत के इमाम हैं, जबकि दूसरे जो हैं अल्लामा ज़मख़शरी भाई ये बहुत बड़े नहवी गुजरे हैं और इनकी किताब मुफस्सल जो है नहव की अजीम किताबों में से है। याद रखो अल्लामा ज़मख़शरी जो थे ये मोतजिली थे, मोतजिला एक गुमराह फिरका गुजरा है भाई। ये अल्लामा ज़मख़शरी जिन्होंने कशाफ जैसी अजीम किताब लिखी, जिन्होंने मुफस्सल जैसी अजीम किताब लिखी, लेकिन ये मोतजिली थे, मोतजिला एक गुमराह फिरका गुजरा है और ये फलसफे के बहुत बड़े माहिर थे, फलसफे के बहुत बड़े माहिर थे, हत्ता कि इन्होंने फलसफे को असल ठहरा लिया और कुरान और हदीस में कोई बात फलसफे के खिलाफ आती तो फलसफे की बात को अटल समझते, कुरान और हदीस में तावील करके उसको फलसफे के मुताबिक करने की कोशिश करते थे, बजाय इसके कि कुरान और हदीस को असल समझा जाए और फलसफे में तावील की जाए, उसकी कोई और तकरीर की जाए, वो फलसफे के असूलों को अटल समझते थे कि ये तो कतई है, इनमें तो कोई गलती है ही नहीं, तो चुनांचे कुरान और हदीस की तावील किया करते थे। चुनांचे ये कहते थे कि जन्नत और जहन्नुम का वजूद नहीं है, जन्नत और जहन्नुम का वजूद नहीं है, क़यामत में अल्लाह ताला फिर उनको उस वक्त पैदा फरमाएंगे, इसलिए क्योंकि ये नौ कुरे हैं, समझ में आया, नौ कुरे हैं यानी नौ आसमान हैं, कितने, नौ आसमान, कुरान तो सात आसमानों को जिक्र करता है लेकिन फलसफे में नौ आसमानों का जिक्र है, ये फलसफे की बात को अटल समझते थे कि नौ आसमान हैं और उन नौ आसमानों से बाहर न खला है न मला है, ना कोई खाली जगह है ना भरी जगह है, बस यही है नौ आसमान है बस। इनके कहने का मतलब यह था गोया अल्लाह के पास जगह ही नहीं है जहां पर जन्नत और जहन्नुम को पैदा फरमाए, क्योंकि ये नौ कुरे हैं, नौ आसमान हैं, इनसे बाहर ना खला है ना मला, ना खाली जगह है ना भरी हुई जगह है, खला का माना खाली जगह, मला का माना भरी हुई जगह, जगह ही नहीं, अल्लाह कहां पैदा फरमाए। हां क्यामत में अल्लाह जब इन चीजों को समेट देंगे, इनको लपेट देंगे, तो फिर अल्लाह जन्नत और जहन्नुम को पैदा फरमाएंगे। तो देखा फलसफे को असल बनाया, कुरान और हदीस में तावील कर ली भाई। और नीस ये मेराज जिस्मानी के मुनकिर थे, हालांकि अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक हुजूर अलैहिस्सलाम मेराज पर अपने बदन मुबारक के साथ तशरीफ ले गए थे, ये कोई ख्वाब नहीं था बल्कि बाकायदा हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए थे आसमानों पर। ये कहते हैं भाई कि ये जमीन के गिर्द एक कुरा नार है, आग का एक कुरा है जिसने जमीन को, गेंद है जिसने जमीन को चारों तरफ से घेरा हुआ है भाई, और इस आग में से कोई गुजर ही नहीं सकता, जो गुजरेगा जल जाएगा। तो मेराज जिस्मानी नहीं थी बल्कि मनामी थी, भाई ख्वाब था, ख्वाब था। तो देखा फलसफे के उसूल को असल समझा और कुरान और हदीस में तावील कर ली, भाई कुरान और हदीस में तावील कर ली। हालांकि आज आप देख रहे हैं कि खलाई जहाज खला में जा रहे हैं और आ रहे हैं, कोई कुराए नार नहीं है भाई, कोई कुराए नार जमीन के गिर्द मौजूद नहीं है, लेकिन इन्होंने फलसफे को असल समझा। तो यह गुमराह फिरका था भाई, और उलमा फरमाते हैं इनको इनकी कसरत इलम ने गुमराह कर दिया। कभी कभार कसरत इलम भी गुमराही का सबब बन जाती है भाई। तो ये चूंकि फलसफे और मंतिक के बहुत बड़े माहिर थे भाई, तो उसको असल ही ठहरा लिया भाई। तो ये हैं अल्लामा ज़मख़शरी भाई, लेकिन मोतज़िली हैं, लेकिन बहरहाल कशाफ जैसी अजीम तफसीर इन्होंने लिखी और इसी तरह मुफस्सल जैसी अजीम अजीम नहवी किताब इन्होंने लिखी भाई। तो अल्लामा ज़मख़शरी जो है उनके नजदीक मौरब किसको कहते हैं, वो ईसा जिसमें एराब का मुस्तहिक होने की सलाहियत हो, तो सिर्फ सलाहियत काफी है, जबकि साहिब काफिया उनके नजदीक सिर्फ सलाहियत काफी नहीं बल्कि बिलफेल एराब का मुस्तहिक हो जाए। देखिए भाई किताब पर कहते हैं वातबर अल मुसन्निफ रहिमहुल्लाह मा सलाहियति हुसूल अल इस्तेहकाक बिलफेली, जबकि मुसन्निफ यानी साहिब काफिया ने सलाहियत के साथ साथ एतबार किया है हुसूल अल इस्तेहकाक बिलफेली के बिलफेल वो इसम जो है एराब का मुस्तहिक हो जाए, हुसूल इस्तेहकाक हो जाए, एराब का मुस्तहिक होना उसको हासिल हो जाए, यानी वो मुस्तहिक हो जाए एराब का। वलिहादा अखदत तरकीब फी तारीफी ही, इसीलिए साहिब काफिया ने तरकीब को लिया है इस मौरब की तारीफ में, तरकीब को जिक्र किया कि अल मुरक्कब, वो मुरक्कब होना चाहिए भाई। ये माना है वलिहादा अखदत तरकीब फी तारीफी ही, और इसी वजह से साहिब काफिया ने तरकीब को लिया है यानी उसको जिक्र किया है फी तारीफी ही अई फी तारीफ अल मौरबी। व अम्मा वजूद उल एराब बिल फेली फी कौन इस्म मौरबन फलम यातबिर हु अहदुन, और बाकी एराब का बिल फेल होना, व अम्मा वजूद उल एराब बिल फेली बाकी एराब का बिल फेल होना फी कौन इस्म मौरबन इसम के मौरब होने में फलम यातबिर हु अहदुन, इसका किसी ने एतबार नहीं किया, यानी मौरब उसी को कहेंगे जिस पर बाकायदा एराब आ जाए। ज़राबा ज़ैदुन, ज़ैदुन पर मैंने क्या जारी कर दिया एराब, इसको मौरब कहा जाए, इसका एतबार किसी ने नहीं किया। यह तो बिल इतफाक मौरब है भाई, इस्तिलाही मौरब किसे कहते हैं, इसमें इख्तिलाफ किया है, माना समझ आ रहा है। तो कहते हैं वह अम्मा वजूदुल एराब बिल फेली बाकी एराब का बिल फेल होना फी कौनिल इस्म मौरबन इसम के मौरब होने में फलम यातबिर हु अहदुन, उसका एतबार किसी ने नहीं किया। वलिदालिका युकालु, और इसी वजह से कहा जाता है, देखो ये इबारत समझ लो, लम तो अरबिल कलिमतु वही मौरबतुन, लम तो अरबिल कलिमतु वही मौरबतुन। एक शख्स है मसलन इबारत पढ़ रहा है, ज़राबा ज़ैदुन लिखा हुआ है, उसने क्या पढ़ा ज़राबा ज़ैद, क्या पढ़ा ज़राबा ज़ैद, तो उस मौके पर कहते हैं लम तो अरबिल कलिमतु, इस कलीमा को एराब नहीं दिया गया, यानी जैद को, उसने जैद को एराब दिया, तवज्जो है, उसने क्या पढ़ा ज़राबा ज़ैद, ज़ैद पर एराब नहीं पढ़ा, तो उस मौके पर क्या कहते हैं लम तो अरबिल कलिमतु, इस कलीमे पर एराब नहीं पढ़ा गया, इस कलीमे को एराब नहीं दिया गया। वही या मौरबतुन, हालांकि यह मौरब है, इस हाल में कि यह क्या है मौरब है, इस हाल में कि यह मौरब है। देखा इस कलीमे को एराब नहीं दिया गया, कौन सा एराब मुराद है बिलफेल एराब नहीं दिया गया, यानी एराब लुगवी, और हालांकि यह मौरब है, मालूम है कौन सा मौरब है इस्तिलाही, क्या मुराद है इस्तिलाही, कि इस कलीमे को कोई एराब नहीं दिया गया, यानी लफ्जों में तो एराब इस पर जारी नहीं किया गया, हालांकि यह तो क्या है मौरब है, इस्तिलाह के एतबार से तो मौरब है, इस पर तो एराब जारी करना चाहिए था भाई। तो देखो कलीमे पर एराब जारी नहीं हुआ, फिर भी उसको मौरब कहा जा रहा है, फिर भी उसको मौरब कहा जा रहा है। मालूम हुआ इस्तिलाह के अंदर मौरब सिर्फ उसी को नहीं कहते जिस पर बिलफेल एराब जारी हो जाए, बल्कि जिसमें एराब की सलाहियत आ जाए उसको भी मौरब कहते हैं। तो इसको किस तरह पढ़ना, लम तौरबिल कलिमतु, और ये अल कलिमा इसका नाई फाइल बन जाएगा, इसको फेले मजहूल पढ़ो, लम तौरबिल कलिमतु, इस कलिमे को एराब नहीं दिया गया, वही मौरबतुन, इस हाल में कि यह मौरब है। या इसको मुखातब का सिगा पढ़ो, फिर फेले मजहूल ना पढ़ो, फेले मारूफ पढ़ो, लम तौरबिल कलिमता, उस शख्स को कहा जा रहा है जिसने एराब नहीं दिया, लम तौरबिल कलिमता, आप कलिमत को मफूल बनाओ, तूने इस कलिमे को एराब नहीं दिया, आपने इस कलिमे को एराब नहीं दिया, वही मौरबतुन, हालांकि ये मौरब है। तो दोनों तरह पढ़ सकते हैं, फेले मजहूल पढ़ें तो अल कलिमा को नाई फाइल बनाएं, और मुखातब का सीगा पढ़ें तो फिर फेले मारूफ पढ़ें, लम तो अरिब, इसके अंदर अंता जमीर फाइल और अल कलिमा को क्या बनाओ, मफूल बनाओ। यहां तक इबारत समझ में आ गई। कहते हैं वलिदालिका युकालू लम तौरबिल कलिमता वही मौरबतुन, और इसी वजह से कहा जाता है लम तौरबिल कलिमता के तूने कलिमे को एराब नहीं दिया, वही मौरबतुन, हालांकि ये मौरब है। ये चार पांच सत्रें पहले जहां से हमने आज का सबक शुरू किया, ये एलम अन्ना साहिब अल कशाफ से लेकर वही मौरबतुन जो अभी जहां तक हमने पढ़ा, याद रखो ये सारी इबारत मीर सैयदुस्सनद की है। ये किसकी इबारत है, मीर सैयदुस्सनद जो है उन्होंने रजी की शरह काफिया है उसके ऊपर हाशिया जो लिखा वहां से यह इबारत ली गई है मीर सैयदुस्सनद की भाई, और इसमें उन्होंने फर्क जिक्र किया कि साहिब कशाफ और साहिब काफिया दोनों का मजहब अलग अलग है मौरब के बारे में भाई। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।